नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक गांव में कोई कुआं नहीं था। उस गांव की महिलाएं बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाया करती थीं। तो एक परोपकारी सेठ को विचार आया कि महिलाएं इतनी दूर जाती हैं पानी लेने के लिए, क्यों ना इस गांव में एक कुआं खुदवा दिया जाए ताकि महिलाओं को सहूलियत हो जाए, पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। उसने वहां कुआं खुदवा दिया। अब पूरे गांव के लोग बड़े आनंदित थे कि उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था, गांव में ही पानी की पूरी व्यवस्था थी। लोग पीने का पानी भी इस्तेमाल करते थे, नहाया भी करते थे। एक बार एक शरारती लड़का उसी कुएं के मुंडेर पे खेलने लगा और खेलता खेलता कुएं में गिर गया। गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पिताजी बड़े नाराज हुए उस लड़के के कि सारा काम जो है सेठ जी का ही है, ना वो यहाँ कुआं खुदवाते, ना मेरा बेटा गिरता, ना उसकी मृत्यु होती। बड़ा ही नाराज हुआ, बड़ा ही दुखी हुआ, बड़ी हाय तौबा उसने मचाई। लेकिन किसी विद्वान ने, किसी समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया कि वास्तव में चीजें, सभी चीजें अच्छे कार्य के लिए होती हैं, लेकिन यदि उसका गलत प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति दुखी होता है, उसको नुकसान होता है। खेलने के लिए बड़ा सा मैदान था, खेलने की जगह वो नहीं थी। कुएं का मुंडेर कोई खेलने की जगह नहीं है, मैदान में खेला जा सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है ना कि चीजों का यदि गलत उपयोग किया जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए चीजों का सही सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चाकू, यदि चाकू से आप सब्जी काटते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सुख देता है। आपकी घर की जो कार्यक्रम है, दिनचर्या है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया में है, कितनी मदद करता है। लेकिन उसी चाकू से यदि आप किसी का हाथ काट दें, किसी का गला काट दें, तो वो गलत प्रयोग हुआ, वो आपको दुख देगा। संसार की तमाम चीजों को यदि आप देखें, सब सुख के लिए बनाए गए थे, शायद हमने उनका गलत प्रयोग किया, इसीलिए हम भी दुखी हुए और दूसरों को भी दुख हम देने लगे। अल्कोहल की ही बात कर लें, अल्कोहल दवा में भी मिलाई जाती है और हम बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है उस दवा को पीने से। लेकिन अल्कोहल को यदि शराब के रूप में लेना हम शुरू कर दें तो फिर वो हमारे लिए कितना नुकसानकारक है हम जानते हैं। तो मित्रों, हर चीज का सही सही उपयोग किया जाए, उसका गलत उपयोग ना करें, इस चीज का हम ध्यान रखें। क्योंकि जहां कहीं हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जहां कहीं हम इन चीजों का गलत उपयोग करते हैं, वहां दुख के दरवाजे पे हम दस्तक देते हैं और हमारा जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि दुख आपसे दूर दूर तक कोई संबंध ना रखे, सुख ही सुख आपके जीवन में हो। इसीलिए लगातार समाधान के माध्यम से ये बातें आप तक पहुंचाते रहते हैं। ऐसे सुख भरी बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है।
शुक्रिया
भ्राता जी। ये एक थोड़ा सा व्यक्ति समझ नहीं पाता कई बार कि कैसे चीजों का उपयोग हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें गलत ढंग से उपयोग की जाती हैं, तभी हम दुखी स्थिति तक पहुंच पाते हैं।
ये बात बिल्कुल ठीक है। पैसे कोई ले लीजिए, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है। हम रोज सुनते ही रहते हैं कि फलाना मिनिस्टर, उसके पास इतना पैसा, तो उसके बच्चे कैसे रोज इतना इतने हजार रुपए खर्च कर देते एक एक दिन में। कईयों का तो सुना लाखों रुपए लोग खर्च करते एक एक दिन में अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। तो ये धन का मिसयूज ही है ना, वो गलत कार्यों में, गलत खाने पीने में उसको उपयोग करेंगे, जो अंततः उनके लिए दुखदायी होगा। वही धन अगर वो परोपकार में लगा दे, मान लो कोई एक ही व्यक्ति एक दिन में 1,00,000 अपने लिए खर्च करता है, उसका एक दिन चलो वो बहुत ही अच्छा खाता पीता है, 5,000-7,000 में भी पूरा कर सकता है, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती। और बाकी पैसा यदि वो परोपकार में लगाए तो लोग उसको कितना लाइक करेंगे, वो सबके दिलों पर राज करने लगेगा, तो उस पुण्य का जो सुख मिलेगा वो बहुत जबरदस्त होगा। हर चीज की यही बात है।
जी जी,
ठीक चीज का प्रयोग ठीक कार्य के लिए किया जाए तो सचमुच बहुत सुखदायी होता है, और यही मनुष्य को सीखना है।
नेता जी, मान लीजिए जैसे आपने धन की बात कही, जिसके पास धन बहुत आ जाता है वो ज्यादातर उसका मिसयूज ही करता है। यदि उसको कुछ पोजीशन मिल जाती है, कुछ अच्छे पद पे चला जाता है, तो भी बिल्कुल सत्ता का मिसयूज करने लगता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है आज के दौर में कि भलाई के काम थोड़े से कम, लेकिन ये बुराई वाले काम या गलत उपयोग करना अपनी सत्ता का या अपने धन का, ये ज्यादा दिखाई देता है।
बिल्कुल, ये किसके पास शक्ति बहुत आ गई, बल बहुत आ गया, तो आतंकवादी और दूसरों को सताने में और गुंडागर्दी में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, लोगों को डराने धमकाने में, और लोग उससे डरने लगते हैं। इसलिए इन सब चीजों के साथ सद्विवेक का होना बहुत जरूरी है। लोगों ने भक्ति में गीत भी गाए हुए, किसी को तूने बल दिया है तो उसको बुद्धि भी दे दे, नहीं तो बल से विध्वंस करने लगेगा सबका, और अंततः उसको भी कोई ना कोई नष्ट कर देगा। उससे भी तो कोई सवासेर मिल जाता है ना, कोई कितना पावरफुल हो उससे पावरफुल कोई ना कोई मिल जाता है। इसलिए मनुष्य के पास सद्विवेक होना बहुत जरूरी है, जो हमें ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होता है। और हम अपनी हर चीज का, यानी सबसे पहले तो हमारे पास मन की शक्ति है, अपनी बुद्धि की शक्ति है। साइंस के साधनों को ही आप ले लीजिए, अभी लैपटॉप किसके पास है, बहुत अच्छी चीज है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उसके एजुकेशन में उससे फायदा लिया जाता है, पढ़ने पढ़ाने में, चलो कभी मनोरंजन में भी उसका फायदा होता है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन उससे ली जा सकती है। लेकिन उसका ही प्रयोग कोई गलत साइट पे जाके रोज सारी रात जाके गंदी पिक्चरें देखने में करे तो उसका जीवन एक साल में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो मनुष्य को सद्विवेक की बहुत जरूरत है, हर चीज का सदुपयोग करके वो अपना भी भला करे और दूसरों का भी कल्याण करे।
बिल्कुल, मतलब सदविवेक की आवश्यकता होगी तभी वो सही सही ढंग से सही सही चीजों को यूज कर पाएगा। चलिए भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। अब ये पहला हमारे पास विशाखापट्टनम से वरलक्ष्मी जी ने भेजा है, और ये कहती है कि मेरा बहुत ही टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कहती है कि अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ और बाद में सोचती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा बोल देना चाहिए था, और जब ये स्थिति बनती है तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट भी होती हूँ कि मैंने बोला क्यों नहीं। तो मैं अपनी इस परिस्थिति से, अपनी समस्या से कैसे मुक्त हो सकती हूँ, मुझे कैसे बोलना आए, क्योंकि जब गलतियां नहीं होती हैं और कोई व्यक्ति सुना जाता है तो व्यक्ति बहुत परेशान भी होता है।
कई व्यक्तियों में थोड़ा हेजिटेट होने की नेचर होती है, कईयों की थोड़ी शर्मीली नेचर होती है, कईयों में थोड़ा ऐसा भाव होता है कि बड़ों के सामने वो बोल ही नहीं पाते, बड़े चाहे उन्हें कुछ भी कह रहे हों, और कईयों का ऐसा होता है कि वो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए नहीं बोलते। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को यदि मैं कुछ उत्तर दे देता हूँ, दे देती हूँ, तो वो फिर हावी हो जाएगा और ये वो, और उसको शांत करना फिर बहुत कठिन हो जाएगा।
लेकिन इनकी स्थिति बिल्कुल अलग है,
इसलिए इनको ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। उसमें भी मैं एक महान आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं, मेरे पास मन की शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं भगवान की संतान हूँ, उसने मुझे अपनी शक्तियां भी दी हुई हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करे कि अपनी बात थोड़े अच्छे शब्दों में और थोड़े शब्दों में कहने की, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जिनको बोलना नहीं आता, जो भाषण करना नहीं जानते, ये एग्जीबिशंस लगती हैं, लोग देखने आते हैं, एक ग्रुप उनको दे दिया गया, भाई तुम सुनाओ अच्छा इनको, चलो गांव की माताएं आ गई देखने, सुनाओ तुम, जो भी सुनाएंगे वो तो अच्छा ही सुनाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वो ये महसूस करने लगते हैं कि बोलने की कला और बोलने की शक्ति तो हमारे अंदर है, और इस तरह से सब ठीक हो जाता है।
बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है जी कि उस समय तो विचार नहीं आया, बाद में जब विचार आता है तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए था, और उसी में बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं। तो इस स्थिति से भी कैसे निकला जाए?
मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मनुष्य को विचार नहीं आता, बाद में विचार आता है, इसका एक कारण प्रतीत होता है कि दूसरा व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, मान लो क्रोध में बोल रहा है, तो उसके शब्दों का नहीं, उसके क्रोध का इफेक्ट मनुष्य पर रहता है। या दूसरा व्यक्ति बड़ा है, वो थोड़ा पावरफुल है, वो हमें दबाता है हमेशा, तो उसकी इस नेचर का इफेक्ट मनुष्य पर रहता है, इसलिए वो उस समय भूल जाते हैं जो उन्हें कहना चाहिए, और जब वो उन वाइब्रेशन से मुक्त हो जाते हैं तब वो चीजें उनके अंदर से इमर्ज हो जाती हैं। इसके लिए वही बात कि सवेरे उठ के थोड़ा मेडिटेशन करें और अपने अंदर बहुत अच्छी पीस धारण करें, मास्टर सर्व शक्तिवान का अच्छा अभ्यास करें ताकि इनका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाए, और इससे फायदा ये होगा कि जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके वाइब्रेशंस का प्रभाव इन पे कम होने लगेगा और धीरे धीरे बिल्कुल नहीं होगा, और ये इनके लिए बहुत फायदे की चीज है।
बिल्कुल, मतलब ये योग का अभ्यास कर ले तो सारी सिचुएशन ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी मान लीजिए बाद में मुझे विचार आया कि मुझे, मैं ठीक हूँ, मैंने गलत नहीं किया था, सामने वाले ने गलत गलत कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया बोल के चली गए, अब विचार आ रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा बोल देना था, तो क्या अब जाके बोल देना चाहिए कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर कर ले?
बिल्कुल, बात अपनी क्लियर कर लेनी चाहिए, तब तक वो व्यक्ति भी शांत हो गया होगा और इनमें भी पावर आ गई होगी, तो अपनी बात कह अवश्य देनी चाहिए।
जी, जी, जी।
और मान लो वो व्यक्ति बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, तो लिख के भी दे देना चाहिए सम्मान सहित। कई जगह लोग ये करते हैं, हमने भी कराया कि बहुत सम्मान से उन्हें प्यार देते हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और अपनी के ये नहीं बात ऐसी है, बाकी आपका विचार जैसा भी हो निर्णय आपको लेना है, तो अपनी एक बात कह देने से अपने को संतुष्टि होगी, गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगी कि हम इन्हें कहा नहीं और हम तो सत्य थे बिना मतलब ही
बात हमसे कर दी गई है।
तो ये बहुत
कई बार व्यक्ति इससे भी हल्का हो जाता है, अदरवाइज ये रहता है भारी भारीपन बना रहता है कि सामने वाला तो बॉल फेंक के चला गया, बॉल मेरे पास है और ये परेशान कर रहा है, तो उस बॉल को वापस उसके पाले में डाल के आ जाना चाहिए। प्रथम जी, सेकेंड हमारे पास जो मेल आया है राजेंद्र जी का ही, कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एमएससी बीएड एंड आई एम वर्किंग एज लेक्चरर ऑन टेम्परेरी बेसिस सिंस 4 इयर्स सर, सो एज टू बिकम परमानेंट लेक्चरर, विच टाइप ऑफ थॉट्स वुड आई जनरेट अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन। तो किस प्रकार से ये विचार दे सकते हैं भ्राता जी?
क्योंकि ये तो बात बहुतों की सामने आती रहती है, टेम्परेरीली लोगों को जॉब पे रख लिया जाता है और फिर हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जॉब परमानेंट हो जाए और यही जीवन की बहुत अच्छी सफलता भी होती है, इससे मनुष्य अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा निश्चिंत रहता है। तो पहले तो इनको अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सुंदर रखना चाहिए, यानी इनका पढ़ाने का ढंग इतना सुंदर हो कि वो हवाई फैल जाए कि ये बहुत अच्छा लेक्चरर है, इससे हमारे कॉलेज का नाम रोशन होगा या इससे क्लास की रिजल्ट बहुत अच्छी होगी, या आज तक जो कठिन सब्जेक्ट रहा है वो इसने आकर सरल कर दिया है, इससे बहुत अच्छी डिमांड बढ़ जाती है। मुझे याद है हमारे यहाँ गांव में अभी एक टाउन ही था पास में, वहाँ 12वीं तक का एक जूनियर कॉलेज था, अभी फिर वो 12वीं भी खत्म करके 11वीं 12वीं भी 10वीं तक ही रख दिया गया था, अभी बच्चे तो पढ़ने आते थे, कहाँ पढ़ने जाएं, दूर दूर तक कॉलेज नहीं थे। तो एक साइंस के टीचर आए, मौलवी साहब उन्हें कहते थे, मुस्लिम थे, दाढ़ी थी, मौलवी साहब भी उनका नाम रख दिया था। अब उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इतना अच्छा पढ़ाया, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई, कि रिजल्ट पहले ही साल से रिजल्ट सुंदर हो गया, जहाँ 30% 20% बच्चे पास होते थे अब वहाँ 65% पे आ गया पहले ही साल, और उसका तो नाम हो गया कि एक मौलवी साहब आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जब 3-4 साल में रिजल्ट अच्छा हुआ तो पुनः 11वीं 12वीं की परमिशन मिल गई, तो बहुत अच्छा रहा। अब उनको कोई छोड़ने को तैयार नहीं था, दूसरे लोग उनको बुलाते थे कि भाई हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, उस टाइम 160-180 रुपए दिया जाता था इन टीचर्स को, दूसरे कहते थे हम आपको 250 देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। तो हर व्यक्ति को जो जिस फील्ड में है अपना कार्य इतना सुंदर करना चाहिए, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन इतना अच्छा करना चाहिए कि उसकी डिमांड हो जाए, एक तो ये इनके लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज इनमें इनको खुद भी डेवलप करनी है, लेकिन ज्ञान और योग ये तो इन चीजों को बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य में एक अच्छा बोलने की कला आ जाती है। और देखिए पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक चीज है कि उस व्यक्ति की वॉयस बहुत क्लियर हो,
इसके लिए तो उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी।
मान लो वो बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान लो सब्जेक्ट फिजिक्स का ही है या इंग्लिश का है, वो सब उन्हें नॉलेज है, वो बहुत अच्छा बताना चाहते हैं, लेकिन वॉयस उनकी क्लियर नहीं, जल्दी बोलते हैं या कुछ खाते हैं कुछ निकालते हैं, ऐसा होता है ना बोलने में, आधा अंदर रख लिया आधा निकाला, तो इसको उन्हें डेवलप करना होगा कि उनकी स्पीड भी एक बात सुंदर हो, न फास्ट न स्लो, मीडियम। कई बार जो बुद्धिमान लेक्चरर होता है वो फास्ट गति से पढ़ाता है, अभी बच्चे तो फास्ट गति वाले नहीं है ना, उसमें से थर्ड क्लास भी बैठे हैं, सेकंड क्लास भी बच्चे बैठे हैं, तो एक ऐसे ढंग से ताकि बच्चे उसको ग्रहण करते जाएं। और फिर करनी है इनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कभी भी इनका एग्जाम या कुछ तो होगा ही, तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस वमान से ये 21 दिन योग अभ्यास करेंगे 1 घंटा रोज, तो जो भी एग्जाम ये देंगे उसमें सहज इनको क्लियरेंस मिल जाएगा और इनकी जॉब परमानेंट हो जाएगी।
बिल्कुल, मतलब योग के साथ साथ ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ब्रदर जी कि अपने आप को प्रेजेंट करना वो भी बहुत आवश्यक होता है। मुझे एक बात याद आ रही थी कि हम लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही थी मीडिया की, तो एक सामान्य से जो शिक्षक थे जो मीडिया की बातें सुनाया करते थे, वो जब बताते थे बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बातें समझ में आती थी, और एक इनवाइट किया गया था बाहर, दिल्ली से बुलाया गया था एक बहुत ही अच्छे लेखक को जो मीडिया की जानी मानी हस्ती थे, वो आए जब और उन्होंने इतनी क्या कहें कि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में हम लोगों को बताया कि हम लोगों के लिए बाउंसर था कुछ समझ में नहीं। हमने कहा सर आप ही ठीक ठीक हमें समझा वो तो बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में ही नहीं आई। तो शायद ये प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस फील्ड में। ओके चलिए ब्रता जी, मैं आपको अगले मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये गौरव जी ने भेजा है, ये कहते हैं भाई जी ओम शांति, मैं ज्ञान में लगभग 10 साल से हूँ और मुझे काफी टाइम से ये परेशानी आ रही है कि 2-3 महीने पुरुषार्थ अच्छा चलता है फिर धारणाएं टूट जाती हैं, फिर एक धारणा टूटने से बाकी सब भी बिल्कुल धरे के धरे रह जाते हैं, फिर योग में मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर डावाडोल स्थिति में आ जाता हूँ कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प भी चलने लगते हैं। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। काफी वर्ष हो गए हैं प्रता जी विद्यालय से जुड़े हुए भी, लेकिन धारणाएं ऊपर नीचे होती रहती।
देखिए इसमें मुख्य धारणा हमारी प्योरिटी की होती है और ये धारणा यदि मनुष्य ठीक से नहीं कर पाता है तो उसको अनेक कठिनाइयां वहां होने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो प्योर संस्कार हैं लेकिन बाह्य रूप से वो उसको पालन नहीं कर पा रहा है। साथी किसी को ऐसे मिल गए, किसी के पुराने संस्कार बहुत प्रबल हैं, या कोई बहुत ऐसी दुनिया में रहता है, मतलब उसकी कंपनी ऐसी है, उसका कर्म क्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ निगेटिव है, गंदगी से भरा हुआ है, उसके 10 साथी हैं, वो सारा दिन गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, तो इन चीजों का इफेक्ट मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इस कारण कईयों की ये धारणाएं टूटती रहती हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो ज्ञान और योग के मार्ग पे चल रहे हैं, महत्व उनका ही बहुत ज्यादा है जिनकी धारणा लगातार सुंदर स्थिति में रहती है। वो तो ऐसा ही है जैसे धागा बार बार टूटता जाए, हम उसमें गांठ बांधते जाएं, जोड़ते जाएं, तो आखिर तो वो सुंदर देखने में भी नहीं लगेगा, कमजोर भी होगा ना, वो कहीं फिर यूज हो सकेगा। इसलिए इनको अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि मुझे प्योरिटी की धारणा में मजबूत होकर रहना, अपने साथी को भी कन्विंस कर देना चाहिए। दूसरी चीज ये, इन्हें कुछ फिजिकल डिसिप्लिन भी बनानी चाहिए, जैसे अलग अलग रहना ये बहुत आवश्यक है, और इम्पोर्टेंट चीज है अपनी बहुत अच्छी साधना करना। लोग इसमें वो फेल होते हैं जो सवेरे उठ के योग अभ्यास नहीं करते, जो ईश्वरीय महावाक सुनने सेवा केंद्र पर नहीं जाते। सवेरे योग अभ्यास न करने से मनुष्य में योग की शक्ति नहीं रहती जो मनुष्य को पावन बनाएगी, तो इम्प्योरिटी उनमें कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाती है, वो हावी हो जाती है उस मनुष्य के ऊपर, क्योंकि चारों ओर वातावरण में बहुत गंदगी है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हम ये बात बार बार अपने सभी दर्शकों को साथियों को याद दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे कि चारों ओर बहुत गंदगी है। अब मान लो हम राजस्थान के ऐसे एरिया में रहते हों जहां धूल उड़ती है सदा, हमारे यहाँ आबू में या आबू रोड में भी धूल उठती है, तो हमें अपनी खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं, नहीं तो बिना मतलब भी 2-4 दिन के बाद सब पे धूल जमी हुई हमें मिलती है, फिर हम उसे साफ करो कई चीजें गंदी हो जाती हैं, तो हमें बचना पड़ता है ना। ऐसे ही हमें जानना चाहिए कि चारों ओर इम्प्योरिटी के वाइब्रेशंस बड़े प्रबल रूप से फैले हुए हैं, जिसे बाबा कहते हैं माया बहुत बलवान हो गई है, वो अटैक करती है और जहां से उसे मौका मिलता है कि इसमें कमजोरी है वहां वो अपना इफेक्ट डाल देती है। इसलिए सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करना, और मैं इन्हें संकल्प देना चाहूंगा ईश्वरीय महावाक रोज सुनना, मैं पवित्रता का सूर्य हूं और ये मेरा जीवन है, ये बहुत स्ट्रांग थॉट, इनको अपने अंदर रख लेना चाहिए और दिन में हर घंटे में 1-2 बार ये याद अवश्य करना चाहिए मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
तो और धारणाएं हैं व्रता जी, शायद उनमें भी यदि ऊपर नीचे हो रहा हो पवित्रता की धारणा, जैसे आप
क्रोध में होता रहता है जी बार बार क्रोध आता रहा, वो प्रतिज्ञा करते रहते हैं ऐसा मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन संस्कार मान लो 50 साल का बहुत प्रबल है
जी,
और अब वो बूढ़े हो रहे हैं तो बूढ़ों को जरा और ज्यादा आता है, अनलेस कि वो बहुत अच्छी साधना करें देहभान से न्यारे होने की और कुछ अपने को डिटैच भी करें। वो क्रोध जो है हमेशा कामनाओं से उत्पन्न होता है, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हो गए उसमें कामनाएं बहुत रहती हैं छोटों के लिए, तो वो पूर्ण नहीं करते, उनका अपना जीवन होता है, उन्हें क्रोध आता है। पति पत्नी के बीच भी ये समस्या बहुत हावी रहती है, एक को क्रोध बहुत आता है, तो ये चीजें भी न केवल जीवन पर गहरा बुरा असर डालती है लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो व्यक्ति उन्हें छोड़ना चाह रहा है वो सफल नहीं हो रहा है, उस पर भी वो बहुत बुरा असर डालती हैं। इसके लिए बस ध्यान दें साधनाओं पर, कुछ अपने को डिटैच करें, कुछ चीजें छोड़ें, कुछ चीजों को रिसीव करें, तो ये सभी धारणाएं संतुष्टता है। संसार में कंपटीशन बहुत है, इच्छाएं होती रहती है मनुष्य की बहुत ज्यादा, किसी में और धारणा है। कई माताओं की बात आती है कि उन्होंने कई बार प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने मुख से कटु वचन बोलकर किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन हमसे दिया जाता है तो हम बहुत पछताते हैं कि अरे हमने इनको नहीं, प्रतिज्ञा टूट गई, हमने इनको कष्ट दे दिया, हमारे कारण इस बेचारे को दुख हो रहा है। तो मनुष्य फील भी करता है, फिर प्रतिज्ञा करता है, फिर टूट जाती है। इसके लिए ये जो हमारी साधनाएं विशेष रूप से पांच स्वरूपों की, मैं इस पे सबका ध्यान दिलाऊंगा, अनादि स्वरूप आत्मा, आदि हमारा देव स्वरूप, फिर हमारा पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता, इनकी गहराई में यदि हम जाते रहेंगे तो सभी चीजों को धारण करना सरल हो जाएगा। मैं सभी साधकों को ये बात कहना चाहूंगा कि योग अभ्यास के साथ साथ, क्योंकि योग अभ्यास में क्या, कई योग को खींचातान रहती है, मन भटक रहा है, एकाग्रता नहीं हो रही, आज काम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो पांच स्वरूपों का अभ्यास है ये कंपैरेटिवली बहुत सरल है। इसलिए पांच बार सवेरे 10-15 मिनट में कर लें और पांच बार रात को, शाम को, इवनिंग में 6 बजे 7 बजे सोने से पहले, तो एक बहुत अच्छी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एकाग्रता में इससे बहुत वृद्धि होती है और ये जो संस्कार हैं ये डिवाइन होते जाएंगे। देखिए दो तरीके हो गए ना, एक है हम अपने क्रोध को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अपनी इम्प्योरिटी को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरा तरीका ये कि हम अपनी प्योरिटी को जगा रहे हैं।
कई बार कईयों का ये भी प्रश्न होता है कि मान लीजिए हमने काफी लंबे समय तक अपने आप को पवित्र रखा, अब किसी कारण से हमारी धारणा टूटनी तो नहीं चाहिए लेकिन टूट गई, तो क्या हमने जो इतने समय तक हमने जो साधना की, जो हमने अच्छे कार्य किए, क्या वो सब नष्ट हो गए या उसका बल हमें मिलेगा?
नहीं, बल तो मिलेगा जितना पुण्य आपने किया है, लेकिन जो अच्छे कार्य किए, सेवाएं की या प्योरिटी अपनाई, वो पुण्य जमा होता है।
वैसे जी ये भी कहा जाता है कई बार, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसे वाणी की बात आपने कही क्रोध की, ये कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो ये जो धारणाओं को सतत कायम रखने में ये पानी वाणी या फिर अन्न मन वाली जो बात है, इनका कितना योगदान?
बहुत बहुत ज्यादा योगदान है। देखिए हम लोग भी जहां तहां जाते हैं ना
जी,
तो पानी भिन्न भिन्न तरह का पिया जाता है तो बॉडी पर इफेक्ट आता है
जी।
और वैसे भी है कि किसी के घर में मनुष्य ने पानी पी लिया तो उसकी थोड़ी तो तरफदारी करनी पड़ेगी ना, इसलिए घर में खाना खा लिया तो नमक खा लिया उसका, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। अन्न जैसा होता है खास, उसका मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिन आत्माओं को ये श्रेष्ठ धारणाएं अपने जीवन में अपनानी है उनको सात्विक और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसका तो परम महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि कई केस यही मिलते हैं, सुनने को आते हैं कि हमने फलानी जगह भोजन खा लिया था, एक लड़के का पत्र आया हुआ लंबा छोड़ा, मैं तो बर्गर खा लेता हूँ बस इससे मेरा सब कुछ बिगड़ता है, जब खा लिया तभी बिगड़ता है।
अरे मैंने कहा तो पेट खराब होता है या मन खराब?
नहीं, मन खराब हो जाता है क्योंकि वो बाहर से खाता है जाके बाजार से, तो मैंने कहा बरगद का पेट बना देता है, तो मैं जीवन में कटेला भी सहला, उसे छोड़ो, अब तो अच्छा जीवन व्यतीत करो।
जी जी, मतलब इन दोनों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो। कृपया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की सुंदर चर्चा के लिए, सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, जैसे ये बात कही जाती है कि पानी का वाणी पे प्रभाव पड़ता है, या हमारी जो अन्न है जो हम ग्रहण करते हैं उसका मन पे प्रभाव पड़ता है, और जीवन में जो हमने अच्छी धारणाएं बनाई हुई हैं उन सब में कहीं ना कहीं इनका असर आता है। मन कई बार विचलित स्थिति में आ जाता है कि अरे यार चलो ये चीज करके देख लेते हैं ना, तो इसलिए हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को, जो कि अंधे थे, आंखें नहीं थी, दोनों को कावर पे बिठा करके पूरी मतलब तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे, जब वो एक जगह पे पहुंचे उस जगह की जमीन ठीक नहीं थी ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं इतना आप लोगों को घुमा रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्या देंगे मुझे इसके लिए। तो पिताजी बड़े समझदार थे, उन्हें समझ में आ गई बात कि शायद ये जमीन जो है ना वो ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, इसीलिए बेटा ऐसा बोल रहा है, तो हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, इतना पितृभक्त मातृभक्त है। पिताजी ने कहा बेटा चल हरिद्वार तक पहुंच जाते हैं, हरिद्वार में तो जो बोलेगा ना हम वो करेंगे, तो जो मांगेगा वो तेरे को देंगे, तो हरिद्वार तक चल। अब हरिद्वार में जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही श्रवण कुमार जी को बहुत ग्लानि हुई कि अरे मैंने अपने माता पिता से क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उन्होंने बहुत क्षमा याचना की कि मैंने, माफ कीजिएगा कि मैं आप लोगों से काम ना कर रहा था कि आप लोग मुझे क्या देंगे, मैं इतना अपनी जवानी के दिनों को इन सब कार्यों में लगा रहा हूँ, आदि आदि इत्यादि। तो पिताजी ने कहा कि ये तुम्हारा दोष नहीं है बेटा, जहां से तुम गुजर रहे थे ना, उस जमीन का ये प्रभाव था, उस स्थान का ये प्रभाव था। क्योंकि अच्छे अच्छे संत भी ऐसे स्थानों पे जहां का वातावरण ठीक ना हो, वहां जाने के बाद उनकी भी मानसिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। तो मित्रों, कलयुग में हम रह रहे हैं, जैसे बैता जी कह रहे थे, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है, तो पानी का भी, तो साथ साथ अन्न का भी, तो साथ साथ ऐसे स्थानों का भी। यदि आप सिनेमा हॉल में चले जाते हैं जहां कुछ ऐसी मूवी लगी हुई है, हिंसात्मक दृश्य या अश्लील दृश्य आप देख रहे हैं, और आप ये सोचें कि आपके मन पे उसका प्रभाव ना आए, तो ये तो असंभव ही है ना। तो इन सब चीजों से हमें अपने आप को बचा के रखना है, तभी हम अपने जीवन को सरल, श्रेष्ठ और सात्विक बना सकेंगे और जीवन में सुख शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो जरूर इन विषयों पे विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।